सबसे बड़ा लाभ है संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि है असंत मिलन, असंत दर्शन, असंत संग। अब थोड़े से में समझ लेना है संत कौन है और असंत कौन है। संत और असंत की बहुत बड़ी व्याख्या शास्त्रों में है और उनके नाना प्रकार के लक्षणों का वर्णन है, पर एक ही बात से संत असंत का भेद कर ले। संत वो है जो भगवान के हृदय में बसता है, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं, और असंत वो है जो भोग के संसार में बसता है और जिसके मन में भोग बसते हैं। ये छोटी सी व्याख्या संत और असंत की मान लेनी चाहिए। जिसके हृदय में भगवान बसते हैं और जो भगवान में बसता है वो संत है। तो ऐसा संत यदि कहीं मिल जाए, ऐसे संत की किसी प्रकार से संगति प्राप्त हो जाए, तो सच मानिए उसके संसार के बंधन से मुक्ति हो गई। ये अत्युक्ति मालूम होगी। वस्तु गुण होता है, एक वस्तु गुण अग्नि का संस्पर्श जानकर हो अथवा अनजान में हो, कोई भूल से आग के अंगारे को हाथ में ले ले या किसी के आग का अंगारा कोई हाथ पर रख दे, जैसे आग अपनी स्वाभाविक दाहिका शक्ति से स्पर्श होने पर हाथ जला देती है, उसी प्रकार से ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो अपनी शक्ति से पाप का नाश कर देती हैं। भगवान का नाम, संत, श्री गंगा जी आदि तीर्थ, इनमें भाव अभाव की आवश्यकता नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। किसी प्रकार से भी सांकेतम पारिहासम हुआ, इसी प्रकार से संत का यदि मिलन हो जाए वास्तविक, तो उस प्राणी का उद्धार हो गया। अब भाई हम तो ऐसा देखते हैं कि संत का मिलन भी हो गया और हमारा उद्धार हुआ भी नहीं, तो उसमें जरा समझने की बात थोड़ी सी है। ठीक ठीक स्पर्श प्राप्त तो नहीं हुआ। लोहा और चुंबक, ये पारस मिले नहीं, अथवा यूं कहना चाहिए कि लाभ तो हो चुका है। यदि संत मिले हैं तो लाभ हो गया, वो लाभ अब तक सामने नहीं आया। जैसे किसी दरिद्र के नाम पर कोई बहुत धनी आदमी अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर दे विल के द्वारा, वसीयतनामे के द्वारा, उसे बताया नहीं, तो वो धनी तो हो गया, कागजों में आ गया, पर उसको जब तक पता नहीं लगता तब तक वो समझता नहीं कि मैं धनी हो गया। और ये ठीक ही बात है। इसी प्रकार यदि वास्तविक संत मिलन है तो उससे मिलने वाले का काम हो चुका। यहां तक कहते हैं महाराज, पद्म पुराण में आया है कि किसी प्राणी का मरे हुए का मुर्दा जल रहा हो, संत वो शव जल रहा हो, और जलते हुए संत उस शव को कोई संत देख ले, ये महिमा बताई है, तो वो जिसका शव है उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ऐसा माना है ना कि किसी मरे हुए आदमी की जली हुई हड्डियों का कोई चूरा या कुछ कण यदि गंगा में प्रवाहित कर दिए जाएं तो गंगा के स्पर्श से उनका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ तक गंगा की महिमा गाई वो जरा रस की बात है। कवि जगन्नाथ बड़े और ढंग के कवि थे, गंगा के बड़े भक्त, तो उन्होंने कहा कि कस्तूरी निकलती है मृग की नाभि से, और उस कस्तूरी को जिन देवियों ने अपने हृदय पर लगाया, और वो देवियां अगर गंगा में स्नान कर गईं, तो चूंकि वो जिस मृग के नाभि की कस्तूरी थी उन मृगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा महात्मा माना है, बताता हूँ, ऐसा महात्मा माना है। तो ये कोई कह सकते हैं कि ये महात्म जो हैं ये रोचक वाक्य हैं, अथवा ये जितने महात्म बताए हैं ये सारे महात्म अर्थ ये केवल खींचने के लिए उस ओर, ये काल्पनिक चीज है, पर इसको अर्थवाद को अपराध माना है नामापराध में। नाम की शक्ति को, नाम की महिमा को अर्थवाद कहना यह अपराध माना है। तो भाई फिर कर्मों का क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, सारे के सारे कर्म अवश्यमेव भोगने होंगे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, और बिना भोगे कर्मों का नाश होगा ही नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि स्पर्श मात्र से नाश हो गया तो दोनों की संगति कैसे, दोनों में कौन झूठा कौन सच्चा, और दोनों सच्चे तो दोनों की संगति कैसे। ठीक संगति है और दोनों ही ठीक है। कर्मों का भोग हुए बिना नाश नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्म अपना भोग कराएंगे ही। आपको हमको अगर किसी आदमी के 10,000 रुपये देने हैं, तुम दिए बिना मुक्त होंगे कैसे? देने पड़ेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। पर यदि हमारा कोई मित्र मित्रता के नाते 10,000 रुपये जमा करा दे वहाँ, तो हम मुक्त हो गए कि नहीं? कोर्ट में किसी पर डिक्री है और वहाँ उस डिक्री के रुपए कोई जमा करा दे, तो वो डिक्री फिर उस पर रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। इसी प्रकार है, फांसी टल जाती है राजा आज्ञा से। नहीं, ये नियम आप नहीं जानते होंगे, गवर्नर के और वायसराय के हाथ में कानूनन नियम है कि वो चाहे जिसकी फांसी की सजा को रद्द कर सकते हैं, ये कानून है। फांसी से मुक्त कर देंगे वो फांसी देने वाले, वो कहाँ? तो यही तो गंगा में उन्हीं का तेज है, राम नाम में उन्हीं का प्रभाव है। गंगा और क्या वस्तु है? ये भगवान की चरण धोवन है, राम नाम भगवान का नाम है। तो नाम में जो शक्ति है, गंगा में जो ताकत है, ये उन्हीं की ताकत है। वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते, इसलिए इसका समाधान है। और फिर शास्त्रीय समाधान लीजिए, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी कृतिय कथा, ऐसा कहा है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कि अगर ज्ञान की आग जल जाए तो वह आग सारे कर्मों को भस्म कर देगी। अगर भगवान के प्रति कर्म अर्पित कर दिए जाए तो भगवान कहते हैं शुभाशुभ खड़ी रहे, मुक्त से कर्म बंद नहीं, शुभाशुभ सारे कर्मों के बंधन से मुक्त मैं कर दूंगा। फिर भक्ति में भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापे भो मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, भोगना नहीं पड़ेगा। तो चाहे भोग हो जाए, चाहे माफी हो जाए, और चाहे प्रायश्चित हो जाए, तीन प्रकार से कर्म का, जहाँ कर्म का भोग माना है वहाँ भोग के तीन प्रकार माने हैं। प्रायश्चित के द्वारा कर्म का नाश, भोग के द्वारा कर्म का नाश, और भगवत कृपा जनित ज्ञान या भक्ति के द्वारा भोग का कर्म का नाश। तो तीन प्रकार से कर्म का नाश होता है। जिस शास्त्र में कर्म को अवश्य भुक्त माना है उसी शास्त्र में कर्म का इस प्रकार छुटकारा भी माना है, इसलिए कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं। तो इस प्रकार से संत मिलन का भी, ये जिनको विश्वास है उनका छुटकारा नहीं होगा, ये ठीक बात है।
इतना सतर्क होगा कहीं है कि नहीं, तो आपने माने आपका नहीं होगा, आपका हमको भोग के चले जाइए, आपका नहीं होगा, हमारा तो हो गया, आप न मानिए, नहीं कैसे हुआ, आप नहीं हमारा हो गया, आपको नहीं मान से क्या होता है, आप न माने आपका नहीं होगा, आपका नहीं, आप नहीं मानेंगे आपका नहीं होगा, तो हमारा तो हो गया, समझे। तो मैं ये कह रहा था कि संत मिलन, यदि संत का वास्तविक मिलन हो गया तो संत के मिलन का ये प्रभाव है स्वाभाविक, संत होना चाहिए तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है कि वो जिससे मिला है उसके सारे बंधन को वो छुड़ा देगा। क्यों छुड़ा देगा? उसके अपने अंदर इस प्रकार की एक शक्ति है जो बंधन का नाश करती है, और संत की बंधन शक्ति के नाश करने वाली शक्ति का प्रयोग होता है दूसरों के लिए। ये संत का स्वभाव गीता भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो भगवान के भक्त संत होते हैं वो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, मित्र होते हैं, जहाँ दुख होता है वहाँ वो दया करते हैं, पिघल जाते हैं, ममता अहंकार नहीं करते, अपने सुख दुख में समान रहते हैं और क्षमावान होते हैं। तो दूसरे के दुख को वो देख नहीं सकते, जहाँ देख नहीं सकते वहाँ क्या होता है, वो उनका जो दुख नाश करने की शक्ति है उसका प्रयोग होता है। ये संत की ही महिमा है। तुलसीदास महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में संत के हृदय की व्याख्या की, तो कहने लगे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहि न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। ये महिमा, वो कहते हैं कि कवियों ने संत के हृदय को बताया है नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल। बड़ी बढ़िया उपमा दी, मक्खन के जैसा कोमल कौन होता है? तो संत का हृदय गोया मक्खन, मक्खन के समान कोमल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों ने कविता तो दी पर संत के हृदय के लिए ठीक बैठी नहीं। भाई क्यों नहीं बैठी? मक्खन से कोमल को और कौन होगा? बोले कोमल तो नहीं पर स्वयं मक्खने में दोष है। क्या दोष है? तो कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, मक्खन कब पिघलता है? जब खुद संताप पाता है। मक्खन को जब आँच लगती है तब कड़ा मक्खन पिघलता है अपने आँच पाकर, पर संत अपने आँच पाकर नहीं पिघलते। उन पर कितनी दुख आ जाए वो नहीं पिघलते, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरे के दुख को देखकर संत पिघल जाते हैं। ये संत हृदय का और मक्खन का ये भेद है। तो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाना और उसकी सहायता न करना, और उस दुख का नाश करने की हमारे में जो ताकत है उसका प्रयोग न करें, तो वो आंसू बहाना दिखावा मात्र होता है। किसी को हम दुख में देखें और दुख में देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाए, बड़ा अच्छा है, पर उसके दुख को नाश करने की हमारे में ताकत भी है। ताकत न हो तो आंसू पर्याप्त है, ताकत भी है, और हम केवल आंसू बहा करके हट जाएं और उसके दुखों का नाश करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग न करें, तो हम दयालु हृदय नहीं। तो संत हैं दयालु, दूसरे के दुख से संताप पाकर पिघलने वाले, तो उनके अंदर जो ताकत है वो ताकत क्या है? संत में संसार के बंधन को नाश करने की उनमें शक्ति है। युक्तिसंगत बात है, संत के मिलने से क्यों किसी का उद्धार होता है? इसलिए होता है कि संत की स्वाभाविक जो बंधन नाशनी शक्ति है, जो पाप प्रनाशनी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग संत के द्वारा स्वाभाविक उस जीव पर हो जाता है जो जीव संतप्त है, दुखी है। इसलिए संत का मिलन स्वाभाविक मुक्तिदाता होता है, ये एक युक्तिसंगत बात है। और शास्त्र के प्रमाण तो हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि महत का संग है वो दुर्लभो गम्यो मोघश्च, नारद जी का सूत्र है। संत का मिलना बड़ा कठिन, सहज में नहीं मिलते। संत के नाम पर हम जैसे लोग भले ही मिल जाएं, ठगने वाले असली संतों का लोग, संत का मिलन और आगाम्य यदि मिल जाए तो पहचानना बड़ा मुश्किल। वो अपना विज्ञापन लगाया तो घूमते नहीं, लिखे हुए कि हम संत हैं, और लिखे हुए होते वो संत प्राय होते नहीं, तो संत का पता कैसे लगे। अपने पास संत को तोलने वाला कांटा है नहीं। कोई आदमी अगर बहुत हजारों मन लकड़ियों और पत्थरों के तोलने वाले कांटे से हीरा तोला चाहे, और लाख रुपए का हीरा उस पत्थर तोलने वाले कांटे के किसी छेदी में आ जाए, और वो अगर तोलने वाला कहे कि ये क्या जरा सा ही कांटा जो है हमारा ये झुका नहीं, तो ये लाख रुपए का हीरा कहाँ से आएगा। तो उससे यही कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा कांटा हीरा तोलने का नहीं है, ये पत्थर तोलने का, इसे पत्थर तोलते चले जाओ, हीरा तुलेगा नहीं। तो सांसारिक आदमियों की बुद्धि संत को तोल नहीं सकती, वो अपनी आंख से संत को देखेंगे। हमारे कांटे पर आए तो तुम्हारे कांटे पर तो पत्थर आएगा भैया, बारी बारी बहुमूल्य हीरा तो आएगा नहीं। तो इसलिए अगम्य, संत का मिलना बड़ा दुर्लभ और मिलने पर पहचानना बड़ा दुर्लभ अगम्य, तथापि यदि संत मिल गए तो अमोघश्च, संत का मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा, अमोघ है वो, क्योंकि उसकी जो वस्तु शक्ति है उसमें जो अपनी ताकत है। अरे भाई बर्फ के ऊपर हिमालय में जाके बैठ जाइए, बोले हम नहीं स्वीकार करते ठंड को, नहीं स्वीकार करते कहने से वो ठंड की जो अनुभूति है वो कैसे मिट जाएगी। न स्वीकार करो तुम, उसमें जो स्वाभाविक ठंडक है, ठंडा कर देने वाली जो ताकत है वो ठंडा कर ही देगी। आग के समीप जाके बैठिए, गर्मी मालूम होगी ही, चाहे आप गर्मी न मानते हो, न चाहते हो, न स्वीकार करते हो, न करें स्वीकार, वो तो सिर चढ़ के आपके बोलेगी कि मैं गर्मी आ गई। इसी प्रकार से संत का संग यदि वास्तव में हो गया तो संत का जिसको संग हुआ उसका उद्धार हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। इस पर तो भय कहाँ लगता है ये बात कहने में। हम अगर कहें हम संत हैं तब तो हमें भय लगेगा। क्यों भय लगेगा? कि हमारे मिलने वालों का उद्धार हुआ नहीं। तुम डर के मारे कहेंगे नहीं ये बात कि भाई संत मिलने से उद्धार होता है, कहीं हमारे संत बनने में बात आ गई तो इसलिए अपने ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची बात संत कि हम तो संत हैं नहीं, संत होते तो उद्धार होता ही, ये तो प्रमाण हुआ नहीं। तो अगर संत मिल जाए तो पक्की से पक्की बात है, ये शास्त्र का निचोड़ है, अमोघश्च। उसका फिर दूसरा फल अर्थ लगाते हैं जो कुछ थोड़ा सा संदेहवादी हैं, वो कहते हैं भी कुछ फल तो होगा ही, व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ फल हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, पूरा तो जानने से ही होगा। ये वैसी बात है कि आपको जानने से आज पूरी जलाएगी नहीं तो कम जलाएगी, ये जैसे असिद्ध है, आपको जानने से आज जलावे और न जानने से कम जलाए, ये जैसे असिद्ध बात है, इसी प्रकार संत को संत जानने से संत दूर करे उसके बंधन को, और न जानने से न करे ये बात नहीं है। ये संत की अमित महिमा है, जिससे को संत का मिलन हो गया, जिसने भगवान का नाम ले लिया, जो गंगा में नहा लिया उसका उद्धार हो गया, हो गया, होगा नहीं, हो गया। लेकिन हम पहले ही ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, हो सकता नहीं, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूर्वक सदाचार पूर्वक और अभ्यास करके आगे बढ़ो, बहादुर की भांति ये मुफ्त का माल न लेकर और बहादुर की भांति कर्म करके और प्राप्त करो, ये और अच्छी बात, ये तो बढ़िया बात ये है ही। पर कमजोर हम जैसे जो लोग हैं वे लोग तो आसरा ताकते रहते हैं, क्या करें भाई, कुछ होता हुआ था तो है नहीं, तो चलो गंगा मैया ही तार दे, चलो हम ही तार दे, चलो संत ही तार दे, समझे तो। पर ये है, ये अलीक वस्तु नहीं है, है ऐसी बात। तो संत मिलने पर काम तो हो गया, पर हमको करना क्या चाहिए? हमको दो बात करनी चाहिए। ये मुफ्त की बात तो है, पर दो बात करनी चाहिए। एक बात तो ये करनी चाहिए कि संत के मिलन की तीव्र आकांक्षा करनी चाहिए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत गलियों में बाजारों में विज्ञापन करते नहीं घूमते, इस ध्यान देने की बात। साइन बोर्ड लगाकर संत नहीं बैठते कि हम संत हैं आ जाओ। साइन बोर्ड लगाने वाले हम ही लोग हैं, पर सच्ची बात है साइन बोर्ड लगा के बैठना, हम संत हैं भाई आ जाओ उद्धार करने के लिए बैठे, उद्धार करने की दुकान खोल कर बैठे हैं, ये संत बने की दुकान नहीं खुला करती। एक बात तो संत के मिलन की आकांक्षा करनी चाहिए कि ऐसे संत जिनका मिलना ही भगवान के मिलने से बढ़कर, ऐसे संत को भगवान मिलावें। तत्कृपया लभ्य, भगवान की कृपा से ही संत की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता है। तो संगति संसिद्ध कर अंता, संत का जो मिलना है ये संसार का अंत करने वाला है, परंतु संत मिलते नहीं बिना भगवत कृपा के। तो भगवान की कृपा का आश्रय करके भगवान को पुकारे संत मिलन के लिए, एक बात। दूसरी बात, संत की एक परीक्षा करे। परीक्षा करने के बाद इस संत परीक्षा हम कर नहीं सकते, मैं बता रहा हूं ना, संत की परीक्षा हम कर नहीं सकते, हमारे पास वो बुद्धि का कांटा ही नहीं है, तो संत की परीक्षा कैसे करें? हम परीक्षा तो हम नहीं कर सकते, तो अपने लाभालाभ के लिए हम संत चुन सकते हैं। ये परीक्षा कैसे कि जिसके संग से, जिसकी सोहबत से, जिसकी बात मानने से हमारे अंदर दैवी संपत्ति बढ़े, भगवान की ओर वृत्ति लगे, संसार से वृत्ति हटे, पापों से मन हटे, हमारे लिए वो संत है। और जिसके संग से हमारा मन भगवान से हटकर भोगों में लगे, हमारे मन में पाप वासना उठे, हमारा मन भगवान से हटे, हमारा मन विषयों की ओर दौड़ने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे लिए भई ये चाहे संत होंगे हमारे लाभ के वस्तु नहीं। इस प्रकार से अपने मन में अपने लाभ हानि की बात सोच करके संग करे। संग करे, संग करने का अर्थ साथ रहना नहीं है, संग करने का वास्तविक अर्थ है सेवन करना, उसके उपदेशों का अपने जीवन में उतारना। जिस प्रकार से हमें संत कहें उस प्रकार से हम अपने जीवन में उस प्रकार का बनने की चेष्टा करें, ये संत सेवन है। पास रहने में भी बहुत लाभ है, परंतु पास रहने की अपेक्षा भी अधिक लाभ उसके उसके उपदेश का अनुसरण करने में है। एक बात यदि हम संत के मान लें, एक बात वास्तविक, एक बात काम हो गया। गुरु ने कहा, एक शब्द कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म महावाक्य कह दिया, बस ये सारा का सारा केवल ब्रह्म है। ये कहते ही हमने श्रद्धा पूर्वक इसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके देखने लगे, सर्वम खलविदम ब्रह्म काम बन गया। एक वाक्य भी हम ठीक ग्रहण कर ले, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति, एक वाक्य भगवान का मान लिया। हाँ दुर्लभ, ये तो जो माने वो दुर्लभ है, नहीं तो कहाँ दुर्लभ है। हाँ, और एक बात साधन में एक बात मान ले, माम एकम शरणम ब्रज, सारा काम हो गया। भाई जा कहाँ कहाँ भटकते, भगवान ने तो ऐसी ऐसी दया की है। अरे बोले कहाँ कहाँ भटकते हो तुम, छोड़ो ना सब इन बकेड़ों को, ये शब्द है सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। गीता का प्रारंभ होता है अशोचादन शोचस्तम से, और हैं यहाँ से भी, और गीता का परिहार होता, उपसंहार होता है मा शुच से अंतिम, और बीच की चीज गीता का प्रारंभ होता है शिष्यस्तेम साधिमान त्वाम प्रपन्नम से, और उसकी अपूर्णता को दूर करने के लिए भगवान उपसंहार करते हैं माम एकम शरणम ब्रज। शरणागति में कसर रह गई थी कुछ, कसर तो नहीं रहती। अर्जुन के लिए शरणागति में कसर रह गई, ये हम जैसे लोग हैं तो बड़ा अपराध है। अर्जुन तो भगवान के स्वरूप है महाराज, नर नारायण नरम से नरोत्तम नर की भी ऊपर व्यास भगवान ने वंदना की है, लेकिन अर्जुन के कहने के बाद भगवान ने महिमा प्रकट की। अर्जुन ने कहा महाराज शिष्य से हम साधि माम तो हम प्रपन्नम, समझ में नहीं आया क्या क्या करूं, आपका शिष्य आपके शरणागत आप मुझे मार्ग बताओ। इतना कहकर भगवान की बात सुने बिना ही उत्तर दिए बिना ही अर्जुन ने अपना निर्णय दे दिया, नहीं वो शायद गोविंद मुक्ता हुआ लड़ूंगा नहीं। तो भगवान हंसे, अरे तुम पूछ रहे थे हमसे बताओ क्या करें और हमारा उत्तर मिले बिना ही अपना निश्चय तो व्यक्त कर दिया, लड़ेंगे नहीं। हम कहते मत लड़ो तो नहीं लड़ते। अच्छा हुआ ये गीता का बीज, अगर अर्जुन यो नहीं कहते वही कह देते अच्छी बात है तो गीता चलती नहीं, फिर सारा खत्म हो जाता मामला वहीं पर। तो अर्जुन के ब्याज से हम लोगों पर कृपा करने का करके भगवान ने अर्जुन के मुंह से ये कहलवाया अर्जुन तुम कह दो। तो शरणागति में पूर्णता कब होती है, जब सारे बखेड़ों पर से चित्त हट जाता, ये भी करो वो भी करो अरे सब करो, पर ये अलग अलग सब करो तो बड़ी झंझट है, और सबको करो एक ही के लिए या एक ही में सब करो या एक ही को सब कुछ मान कर करो तब काम बन जाता। तो मान एकम शरणम ब्रज, तो सारा जिम्मा भगवान ने अपनी